कम से कम अपने अपने फ़ायदे के लिए। और उसकी वजह यह कि मैं ऑन अ पर्सनल लेवल बता रहा हूँ आपको कि मेरे एक और दोस्त हैं, YC से रिलेटेड ही हैं, तो वो मुझे कह रहे थे कि अबू साद भाई इट्स वेरी टफ़। वो भी स्कूल रन कर रहे हैं इधर ऑर्शर्ड साइड में, ये जो एक्सप्रेस वे के साथ ना, तो बोलते हैं बहुत मुश्किल होता है कि बंदा बिज़नेस भी रन करे और फैमिली को भी टाइम दे और पढ़ना पढ़ाना वगैरह, इल्म भी लेना, तो ये काफ़ी हेक्टिक होता है। तो एट दी एंड ऑफ द डे मैं आपको बताता चलूँ कि माशाल्लाह आप लोग जो भी काम काज कर रहे हैं ना, फॉर इंस्टेंस कोई पढ़ रहा है, कोई कारोबार कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, फॉर इंस्टेंस हो सकता है आप में से कोई ऐसे भाई हो जिनके पास 2 घंटे फ्री टाइम अवेलेबल हो पर डे, तो वो किस तरह उसको यूटिलाइज़ कर रहा है। लेट्स से आप में से कोई ऐसे लोग भी होंगे जिनके पास सिर्फ 1/2 घंटा होगा अपना टाइम स्पेयर करने के लिए, तो एट लास्ट व्हाट काउंट्स इज़ द क्वालिटी के आप अब जो भी टाइम आपके पास अवेलेबल है। लेट्स से कोई बंदा कहता है कि यार मेरे पास जो है ना अभी कह लें कि एक लम्हे का टाइम नहीं होता, तो वो अगर फिर भी रात को सोने से पहले अपना टाइम निकाल के अपनी नींद सेक्रीफाइस करके थोड़ा पढ़ता है, कुरान मजीद का मुतालिया करता है, जितना भी टाइम है, तो इट्स वेरी मच पॉसिबल कि वो बंदा जो सिर्फ 2-4 मिनट पढ़ रहा है ना, ठीक है, वो मार्क्स ज़्यादा ले जाएगा उस बंदे के जिसके पास 2 घंटे थे फ्री और उसने 1 घंटा मुतालिया किया, 1 घंटा ज़ाया किया और 1 घंटा मुतालिया किया, और इस बंदे ने सिर्फ 2-4 मिनट पढ़े होंगे, 5 मिनट पढ़े होंगे। दुनियावी टर्म्स में हम करते क्या हैं, बहुत ज़बरदस्त बात है, नोट कीजिएगा, ये दीन की हिकमत मैं आपको और बता रहा हूँ। हमारे यहाँ दुनिया में हम लोग पता है कैसे जज करते हैं एक दूसरे को, मिसाल के तौर पे देर आर मैनी स्टूडेंट्स इन अ क्लास, राइट, उसमें होता ये है कि कई बंदे होते हैं, कई स्टूडेंट्स दे आर वेरी शार्प, उनको सिर्फ 1-2 घंटे में वो सारा जो है पढ़ लिख के फारिग हो जाते हैं और घूमना फिरना शुरू कर देते हैं, राइट। और एक स्टूडेंट ऐसा है बेचारा, ठीक है, उतना दिमाग तेज़ नहीं है, वो 10-10 घंटे पढ़ रहा है फॉर इंस्टेंस, ठीक है। होता ये है कि जब मार्क्स रिलीज़ होते हैं, पता चलता है कि ठीक है जिसने 1-2 घंटे पढ़ा था तो वो उसके मार्क्स आगे आ गए हैं, वो जो है ऊपर चला गया है, लेकिन आखरत में क़यामत में ऐसे जो है हिसाब किताब नहीं होगा। अल्लाह ताला ये देखते हैं कि एफर्ट किसने ज़्यादा डाली है, मेरी बात समझें आप। आखरत की अगर बात की जाए ना, अगर एक बंदा ज़्यादा वक्त लगा रहा है दीन को समझने के लिए, ज़्यादा मेहनत कर रहा है, नो डाउट कि एक जगह बंदा है वो तहजुदे भी पढ़ रहा है और जो है नमाजें भी उसकी बिल्कुल ठीक है, नाउ दिस गाय ही इज़ स्ट्रगलिंग, वो उसका काम काज भी है और कोई प्रॉब्लम्स में है, लेकिन फिर भी अपने आप को पुश करता है, तो अल्लाह ताला उसकी मेहनत देखते हैं, रिजल्ट नहीं देखते। अनलाइक इन दुनिया, दुनिया में हम लोग रिजल्ट देखते हैं, अब अल्लाह आलम उस बंदे ने, उस लड़के ने कितनी मेहनत की है, लेकिन उसके हम क्या करते हैं, अच्छा इसके मार्क्स ज़्यादा आ गए हैं, यार ये जो है ये चीता बंदा है, इट डजंट वर्क यू नो लाइक दैट इन आखिरा। तो ये है कि इस्लाम हमेशा ना क्वालिटी को प्रेफर करते हैं रादर देन क्वान्टिटी। तो इंशाल्लाह ये है कि कोशिश किया करें कि दीन का नॉलेज ना ज़्यादा से ज़्यादा लें। आज जो टॉपिक मैंने कंसिडर किया है ना, वो थोड़ा सा हमारा जो भी एक रिदम चल रहा था ना उससे हट के है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और इट्स वेरी मच रिलेटिव टू ऑल ऑफ अस, यानी हमारे सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो ये है, आज हम डिस्कस करेंगे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र के बारे में, द एज ऑफ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। और ये एक ऐसा मामला है, ऐसा टॉपिक है कि टुडे यू नो द इस्लामोफोब्स जो भी इस्लाम पे अटैक करते हैं ना, वो सीधा आके इस टॉपिक पे आके ना वो जो है मुसलमानों को ज़र्ब लगाते हैं, ठीक है। उनको आप समझ लें कि ये इट इज़ एज इफ इट इज़ अ हू यू नो इट इज़ अ लूप होल, दे कंसीडर कि यार यहाँ पे मुसलमानों को पकड़ते हैं तो इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। अच्छा, मैंने टॉपिक की क्यों कंसीडर किया है, उसकी को यानी कुछ वजूहात हैं। एक तो ये है कि एटलीस्ट एज अ मुस्लिम हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ गोइंग यू नो गोइंग ऑन अराउंड अस, हमारे आसपास इर्द गिर्द हो क्या रहा है, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल यू एंड आई इफ़ वी आर नॉट इक्विप्ड वेल, हमें अपने दीन का नहीं ना पता, तो कोई भी बंदा आके जो नॉन मुस्लिम है या कोई भी जो ऐसा आप ये समझ लें इस्लाम से हट के है, वो आपको ऐसी बात बताएगा کہ اچھا یار تمہارا دین تم کہتے ہو کہ اسلام از پرفیکٹ, دین ہاؤ از اٹ پاسبل یور پروفیٹ ہی میرڈ اے 9-year-old گرل فار انسٹنس. اگر آپ کو اس جواب کا پتہ نہیں نا, اس کا یہ نہیں, اف یو ڈونٹ نو دی آنسر آف اٹ, تو ڈیفینیٹلی اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیا ہے کہ یار اس کا پوائنٹ ٹھیک ہے. ایک تو اس لیے دس از ویری مچ ریلیٹو. اچھا سیکنڈلی بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ ان کے مائنڈ میں بھی یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے ابھی تک. اور ہوتا یہ ہے کہ دی آئرنی از کہ یو نو وی آر لیونگ ان این انوائرمنٹ ویئر یو نو وی فیل آکورڈ ٹو آسک یو نو سچ کوشچنز. اگر فار ایگزامپل میں کبھی کبھار فار ایگزامپل اگر میرے مائنڈ میں یا میرے دل میں کوئی ایسا سوال ہے نا اسلام کے خلاف, اسلام کے خلاف ان اے سینس کہ کوئی بھی اسلام سے یو نو اس کی ٹیچنگ کے اگینسٹ جاتا ہے, تو میں نا ڈر کے مارے وہ سوال نہیں کروں گا. یعنی نہ امام صاحب کو جا کے پوچھوں گا, مولوی صاحب کو, نہ پیرنٹس کے سامنے جا کے پیرنٹس سے پوچھوں گا. تو ہوتا کیا ہے کہ دیٹ ڈاؤٹ دیٹ پرٹیکولر ڈاؤٹ اٹ ریمینز ان مائی ہارٹ, اینڈ اٹ از ویری مچ پاسبل کہ جب فار ایگزامپل میں ایک پرٹیکولر ایج میں آ جاؤں گا نا, تو ہو سکتا ہے کہ وہ میرے دل میں وہ ڈاؤٹ جو ہے نا اٹ از یو نو اٹ وڈ بی لائک اے وائرس کہ وہ پھیلتا 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 مجھے نا پورا اسلام سے ہی دور لے جائے گا کہ یار کیوں ہے میرے دل میں ایسا. میں چاہے یعنی اگر ایک بندے کی ایسی سچویشن ہے نا, آپ اس کو جتنا مرضی توحید کے بارے میں بتا دیں گے, جتنا مرضی آپ اس کو نماز کے بارے میں بتا دیں گے, لیکن وہ جو ڈاؤٹ ہے نا وہ سب کو اوور شیڈو کر لے گا. اور ہوتا یہ ہے کہ مسلمان ہیں ہمارے درمیان, اس ڈاؤٹ کی وجہ سے نا اندر ہی اندر وہ کشمکش چل رہی ہوتی ہے اور ساری زندگی گزار دیتے ہیں لیکن یہ ڈاؤٹ ہمیشہ ان کے دلوں میں رہتا ہے. اور یہ سوال اس لیے امپورٹنٹ ہے میرے برادرز, آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو کہ شادی شدہ نہیں ہیں, ہو سکتا ہے کل کو جب آپ کی شادی ہوگی اینڈ یور چائلڈ کمز اور وہ کہے گا آپ مجھے بتائیں آپ کہتے ہیں کہ اسلام از پرفیکٹ, بیٹا نماز پڑھو, فجر کی نماز پڑھو, قرآن پڑھو, لیکن ہمارا دین یہ کیوں کہتا ہے بابا جی مجھے ذرا بتائیں آپ, واٹ وڈ بی یو آنسر دین. ہوتا کہ ہم کیا کرتے ہیں, بیٹا تم نے کیسے سوال کیا, بدتمیز چپ ہو جاؤ, ہم اس کو نا خاموش کروا دیتے ہیں, لیکن اس کا جو ڈاؤٹ ہے نا وہ ہم نے کلیئر نہیں کیا. اور یہ صرف اس پرٹیکولر ٹاپک کی بات نہیں میں کر رہا ہوں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہم لوگ نا ڈر کے مارے, ہمارا کلچر کچھ اس قسم کا ہے کہ کوئی ہمارے اوپر فتویٰ نہ لگا دے کوئی, یہ کس نے کیسی بات کر دی ہے, یہ اس نے کیسی جو ہے الٹی سیدھی بات کی اسلام کے خلاف. ویئر ایز ٹو بی ویری آنیسٹ, ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے, ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے اگر تمہیں کوئی چیز پتہ نہیں نا ہے, یو نو واٹ یو ہیو ٹو ڈو, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تم جانتے نہیں نا ہو, ask those people who know. یہ فار ایگزامپل یہ آپ کی غلطی نہیں ہے, یعنی آپ اگر ایک کلچرل پریشر میں آ جاتے ہیں نا آپ کی غلطی نہیں ہے, بٹ ناؤ دیٹ یو نو آپ کو جو بھی ڈاؤٹ اسلام کے یعنی متعلق آپ کو جو بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے نا, یو ہیو ٹو آسک دا رائٹ پیپل اینڈ بینگ این یو نو بینگ این ایلڈر, اگر آپ سے کوئی چھوٹا آ کے کوئی سوال کرتا ہے یا کوئی آپ کا دوست آ کے سوال کرتا ہے, اس کو یو ڈونٹ گیو دیم اے شٹ اپ کال لائک دیٹ کہ یار تم نے یہ کیسی بات کر دی, نہیں, اس کا رائٹ ہے, اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یعنی اس چیز کے پیچھے کیا حکمت ہے, کیا وزڈم ہے. تو اس لیے میں نے سوچا کہ تھوڑا سا نا اس کو اپنے جو بھی ہمارا جو ٹاپک وغیرہ چل رہا تھا تو یہ ٹاپک جو ہے نا ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. اور میرے خیال سے ابھی جو ہمارے نیبرنگ کنٹری میں جو ابھی ایشو چل رہا ہے, آئی ڈونٹ نو, آئی تھنک انہوں نے جو ہے کوئی عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف کوئی میرے خیال سے بات چیت کی تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کی تھی. اچھا میں آپ کو بتاؤں, واللہ اٹس ویری ویری ایزی, اس سوال کا جو جواب ہے نا بہت آسان ہے. اور پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس آج سب کچھ یعنی جو بھی معلومات یعنی جو بھی ہم معلومات حاصل کرتے ہیں نا اس کا ہمارے پاس ٹائم ہے. فار ایگزامپل کوئی بھی آپ کو کوئی پرابلم آتی ہے نا دنیاوی لحاظ سے, یو گو ٹو انٹرنیٹ فار انسٹنس, آپ اس کو نا ڈائگنوز اس کا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یار اس کو کیسے کرنا ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی گرافک ڈیزائنر ہے یا کوئی اور کسی فار ایگزامپل کسی کو کوئی ایک اس کو علم ہے نالج ہے تو وہ کہیں پہ جب اسٹک کرتا ہے نا تو انٹرنیٹ پہ اس کو بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں, اس کا آنسر مل جاتا ہے اور جی اس کو نا آنسر مل جاتا ہے. تو پھر واٹ ہی ڈز از تو پھر وہ جا کے اپنی وہ پرابلم کو سولو کرتا ہے اور پھر جب اس کو کیا کہتے ہیں نا شرح صدر ہو جاتی ہے, جب اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یار یہ ایسے ہوتا ہے تو پھر وہ جو ہے نا اس کو کوئی رکاوٹ نہیں آتی. سو سملرلی जैसे मैंने कहा ये बहुत आसान है, अगर आप थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेना, वल्लाही आई एम टेलिंग यू अगेन ब्रदर्स, इट्स अबाउट टाइम यू एंड आई वी स्टार्ट टेकिंग आवर दीन सीरियसली। आज क्यों लोग हमारे जो है हमारे दीन के ऊपर बात करते हैं, हमारी माँ के ऊपर बात करते हैं, यू नो शी इज़ आवर मदर। आई रिपीट, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, शी इज़ योर मॉम, शी इज़ माय मॉम, शी इज़ आवर मदर। लेकिन कितने हम बेहिस हो चुके हैं कि हमारे पास, हमें उनकी ज़िंदगी के बारे में पता ही नहीं है कि वो क्या, यानी वो कैसे लोग थे, उनका उठना बैठना कैसे था। यानी जब आपको पता नहीं होगा, यू कैन नॉट यू नो काउंटर द आर्ग्यूमेंट, आप उसको जो है यानी एक्सप्लेन कर ही नहीं सकेंगे। अच्छा, बिफोर कमिंग टू एन इस्लामिक वर्जन, इस्लाम को छेड़ने से पहले थोड़ा सा ना मैं आपको हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताता हूँ। हिस्टोरिकल फैक्ट्स ये हैं कि आपने ना इंशाल्लाह एक एक जो मैं आपको पॉइंट आपके सामने रखूँगा ना, इंशाल्लाह इट विल बी सफिशेंट टू डीबंक दिस कॉन्सेप्ट। आप मुझे ये बताएं, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग कुरान मजीद पढ़ते हैं, जो मक्का वाले थे, आपको पता है नबूवत से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन अलकाब से पुकारते थे? अस्सादिक अल अमीन। अब आप मुझे बताएं, माज़अल्लाह, इस ये जो अटैक किया जाता है ना, इस्लामोफोब्स जो हमारे अटैक करते हैं, और मैं आपको बताऊं ये कोई छोटा अटैक नहीं है, यू नो वो दे आर अटैकिंग ऑन टू साइड्स। एक साइड पे वो अटैक ये कर रहे हैं कि माज़अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इज़ शोइंग अ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, जो आज कहते हैं ना कि आज जो मर्दानगी है, जो मुसलमान है वो अपनी औरतों पे बड़ा जुल्म करते हैं, अपनी मनवाते हैं, एग्रेसिव होते हैं, वगैरह वगैरह जो टर्म्स देते हैं। एक साइड पे तो वो ये कॉन्सेप्ट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शादियाँ करते हैं, राइट, औरतों पर जुल्म करते हैं। दूसरी साइड में व्हाट दे आर ट्राइंग टू प्ले इज, वो ये कहना चाहते हैं कि इस्लाम में औरतों पर जुल्म किया जाता है। सो वी फॉर एग्जांपल सो कॉल्ड जो वेस्ट में बैठे हैं, दे आर ट्राइंग टू से कि वी हैव टू लिबरेट मुस्लिम वुमेन। आर यू गेटिंग द आइडिया? ये सिर्फ एक अटैक नहीं है, ये दोनों साइड पे अटैक कर रहे हैं। और अगर आप ये सोचें कि देखें, If you think a bit deeper, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर के ऊपर भी अटैक किया जा रहा है, ऑन यू नो इसके साथ साथ जो उम्महातुल मोमिनीन उन पर भी अटैक किया जा रहा है। वेयर एज अल्लाह सुबहानहू व तआला फरमाते हैं, अन नबी औला बिल मोमिनीन व अज़वाजुहू उम्महातुहुम। गौर से सुनिएगा, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों पर उनकी जानों से ज्यादा उन पर हक रखते हैं। दिस इज द स्टेटस गिवन टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाय हु? अल्लाह सुबहाना व तआला स्टेटस दे रहे हैं, उनकी बुरात कर रहे हैं। और आगे क्या फरमाते हैं, देखिए जो ये जो बातें कर रहे होते हैं ना आजकल, आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वह अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और जो उनकी बीवियां हैं मोमिनों की, मुसलमानों की क्या हैं? माएँ हैं। हमारे लिए समझने के लिए ना ये आयत काफी थी। इफ यू थिंक यू आर अ मुस्लिम, ये आयत हमारे लिए काफी, क्योंकि ये कौन फरमा रहे हैं? अल्लाह सुबहाना व तआला फरमा रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि जैसे मैं, आई गेट बैक टू द टॉपिक, आपको किस अलकाब से पुकारते थे? अस्सादिक अल अमीन। आप मुझे बताएं, अगर तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करेक्टर वैसे होता जैसे ये पोर्ट्रे करना चाहते हैं कि ही वॉज बिहाइंड वुमेन, माज़ अल्लाह, कि उनका उनका जो माइंड सेट था वो वैसे था, तो आप मुझे बताएं क्या वो ये लकब, ये एट्रीब्यूट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको कहा गया था ना, वह अनजिर आशीरतक अल अक्रबीन, जब कुरान मजीद नाजिल होना शुरू हुआ, खुफिया दावत चल रही थी, तो अल्लाह ताला ने आयात नाजिल कर दी कि अपने करीबी रिश्तेदार को, आप रिश्तेदारों को खबरदार कीजिए, डराइए। एंड इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफा पे जाते हैं, पहाड़ पे चढ़ते हैं, और कहते ये हैं कि उस वक्त रवाज ही हुआ करता था, कोई भी चीज़ ऐसी जो इम्पोर्टेंट हुआ करती थी ना, तो अलग सुबह का टाइम, फजर के टाइम पे बंदा, जो शख्स जो बंदा होता वो चढ़ जाता पहाड़ के ऊपर और ऊंची-ऊंची आवाज़ लगाता, यानी हाय सुबह की कमबख्ती, हाय सुबह की जो है आफत आ गई है। तो लोग ये नहीं समझ लेते कि हो सकता है कि कोई आसपास के जो कबीले वाले हैं वो अटैक करने के लिए आ गए, कोई बड़ा मामला चल रहा है, तो सारे लोग ना इकट्ठे हो जाते। तो दिस इज द वे, यू नो, दिस वे नबी करीम सल्लम यू नो डेड, उन्होंने बुलाया और तमाम लोग इकट्ठे हो गए, अबू लहब भी था, अबू जहल भी था, उमर रजी अल्लाह अन्हु सारे थे, ठीक है। और फिर कहते हैं कि ए लोगों, अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि इस पहाड़ की दूसरी साइड पे एक ऐसा लश्कर है जो तुम पर अटैक किया जाता है, अभी तुम पर अटैक कर देगा, यू नो, वुड यू बिलीव मी इन दैट रिगार्ड? सब ने कहा, हम तो आपको सादिक अल-अमीन कहते हैं, बिल्कुल अगर आप ऐसा कहेंगे तो ऐसा ही होगा। सब ने क्या कहा, एक एक ही आवाज में उनकी तस्दीक की कि आप जो भी कहेंगे आप सच कहेंगे। अब देखिए, दिस वॉज द कैरेक्टर ऑफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आर यू गाइस विद मी? तो उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि फिर मैं तुम्हें एक ऐसी आफत से, एक ऐसे अजाब से मैं तुम्हें खबरदार कर रहा हूं कि अगर तुमने अपने आप को उस अजाब से ना बचाया तो तुम्हें जो है ना जहन्नम की आग जो है तुम उससे बच नहीं सकोगे। तो फिर अबू लहब ने जो है फिर वो जो उसने बकवास की थी, उसने बुरे अल्फाज कहे कि तुमने क्या हमें तब्बन लगा या मोहम्मद, कि तुमने यानी एक टाइप की इसको गाली कहते हैं कि तुमने हमें इसलिए बुलाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, इससे थोड़ा सा और अगर आप ऊपर जाएं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लट से जब नबूवत भी आ गई, यानी उनको नबूवत उनको अवार्ड कर दी गई, उसके बाद मक्का वालों ने मुख्तलिफ आपके नाम रखे, साहिर, कज़्ज़ाब, ठीक है, माज़ल्ला, और बहुत सारे नाम रखे, ठीक है, आपको मारा भी, आप पे थूका भी गया, लेकिन आप मुझे बताएं, इज़ देयर एनी हिस्टोरिकल फैक्ट, या तो कुरान मजीद में या अहादीस में मुझे बता दें कि मक्का वालों ने एक बार भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये तोहमत लगाई हो, ऐ मोहम्मद ये क्या तुमने किया, इतनी छोटी बच्ची से तुमने शादी कर ली है? आप मुझे बताएं, मक्का वाले एक एक उनकी छोटी से छोटी हरकत को नोट किया करते थे कि कोई ना कोई तो लूप होल मिले ताकि हम नबी करीम सल्लम की दावत को रोक सकें। देन व्हाई डिडंट दे से, यू नो, व्हाई डिडंट दे ब्रिंग दिस इशू देन? आर यू गाइस विद मी? मेरी बात समझ रहे हैं आप? अच्छा, एक तो ये है, इसके साथ साथ ये जो इशू आ रहा है ना कि इतनी यंग एज में जब शादी कर दी गई थी, अप टिल 19th सेंचुरी या अर्ली 20th सेंचुरी ये मामला था ही नहीं, किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अटैक किया ही नहीं इस तरीके से। हालांकि इन डिफरेंट टाइम्स हमारे नबी के ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ अटैक्स किए जाते रहे हैं, कभी उनको कुछ कहा गया ताकि क्यों उनको डिफेम किया जाए। आपको बताता चलूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बाद इंसानियत में सबसे यानी मुअज्जम, सबसे अजीम हस्ती मखलूक में वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। हैविंग सेड दैट, सबसे ज़्यादा जो बुक्स लिखी गई हैं जिनके अगेंस्ट, वो हमारे नबी के अगेंस्ट लिखी गई हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यू हैव टू नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन सिंस द बिगिनिंग, होता क्या रहा है। इसके अलावा आप मुझे ये बताएं, जैसे हमने देखा ना मक्का वालों ने कभी इस इशू को जो है वो लेके नहीं आए, इसके अलावा हिस्टोरिकल फैक्ट आपको कभी नहीं मिलते कि हिस्ट्री में किसी ने कहा हो 19th सेंचुरी तक और या अर्ली 20th सेंचुरी तक किसी को कुछ, यानी इट वॉज नॉर्मल, कोई यानी ये बात ही नहीं थी डिस्कस करने वाली। अच्छा, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, इस्लामिक स्कॉलर्स, आपको पता है सुभान अल्लाह, यू नो, द मोर यू रीड अबाउट योर दीन, यानी इस्लाम, ये जो हमारे स्कॉलर्स हैं ना, उलमा हैं, इन लोगों ने अपनी सारी सारी जिंदगियां लगा दी हैं दीन सीखने पे। इमाम बुखारी की लाइफ को देखा जाए, इन्होंने एक एक हदीस के लिए कितने कितने हजारों मील सफर किया है पैदल। आप जब अपना इस्लामिक जब हिस्ट्री देखते हैं ना, अपने स्कॉलर्स को जब आप देखते हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स को, किसी ने इसको डिस्कशन का एक मौजू बनाया ही नहीं, कि यानी इट वॉजेंट अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन। गेट्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल जब उसको आने लग जाते हैं, देन दैट गर्ल कैन गेट मैरिड, ठीक है। इसके साथ साथ आई वॉज वेरी मच एस्टॉनिश्ड टू सी दिस रिपोर्ट, मैं पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कि आज की डेट में अलास्का में अब देखें उनका रूल कैसे है, उनके कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, वैसे तो वहाँ पे शादी की जो एज है, फॉर एग्जांपल 16 होगी या 18 होगी, वो मैंने सर्च नहीं किया, लेकिन इफ द गर्ल बिकम्स प्रेग्नेंट एट द एज ऑफ 14, देन द बॉय एंड द गर्ल कैन गेट मैरिड। यानी उन्होंने देखे कितना अजीबो गरीब रूल है, पता करने के लिए कि वाकई द गर्ल इज एलिजिबल टू गेट मैरिड, इफ शी गेट्स प्रेग्नेंट तो इसका मतलब ये है कि वो मैरी कर सकती है एट द एज ऑफ 14। ये वहां का लॉ है, मैंने आज, यू नो, व्हेन आई वाज स्टडिंग आई जस्ट रेड इट। तो एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, जो क्रिश्चियनिटी में ये जो बताया जाता है कि उनका एक सेक्ट है कि मदर मैरी मरियम अलैहि सलाम, माज अल्लाह, विच इज़ रॉन्ग, लेकिन उनकी बुक्स, उन यू नो दिस इज यू नो ऑन द रिकॉर्ड्स, मदर मैरी शी मैरिड द जोसेफ द कारपेंटर, जो वो कहते हैं उन्होंने शादी की थी, एंड यू नो उनके बाद ही ईसा अलैहि सलाम इस दुनिया में आए थे, विच इज़ ऑल यू नो क्रैप। वो ये कहते हैं एट दैट टाइम जोसेफ्स एज वॉज अराउंड 80s और 90s, यानी 80 या 90 साल की उनकी उम्र थी, और मैरी की उम्र उस वक्त तकरीबन, शी वॉज यू नो इन हर टीन एज, तकरीबन 15, 16, 14, 15 साल की थी। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, देखें जब कोई आप पर ये तोहमत लगाता है ना, ये चीज़ें, कोई भी आपको कहता है कि तुम्हारा दीन ऐसे क्यों कहता है, यू शुड नो कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स क्या बताते आए हैं, आप मेरी बात समझें। और कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये जो एक टाइप की बॉम्बार्डमेंट की जा रही है ना, कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो हमारे यहाँ जो नई जनरेशन जो पढ़ रही है, चाहे वो लड़के हैं लड़कियां हैं, अमूमन जब उनको कहा जाता है ना कि व्हाई डोंट यू गेट मैरिड, उनका जवाब भी होता है कि यार शादी की किसको परवाह है। और जब उनसे ये सवाल किया जाता है, तब उस लड़के की उम्र, या उस लड़के की उम्र तकरीबन 28 साल 29 साल 30 साल हो चुकी होती है, और आज के ज़माने में 30 साल के बाद शादी करना या 30 साल तक शादी करना, इट इज़ वेरी कॉमन। और इसी को समझते हैं कि नहीं यार, पहले मैं सेट हो जाऊंगा, सारा कुछ जो है अपने आप को ऑर्गेनाइज करके बाद में ही मैं शादी करूंगा। और ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, हो सकता है आने वाले वक्त में, आज जो लीगल एज जो इंडिया में है या अमेरिका में है, द लीगल एज ऑफ गेटिंग मैरिड इज 18 फॉर इंस्टेंस, अगर 18 साल है ना, इसका ये मतलब है कि 17 साल की लड़की वो शादी नहीं कर सकती, इट इज़ यू नो शी इज स्टिल यू नो नॉट एलिजिबल टू गेट मैरिड। यानी 17 साल की लड़की नहीं कर सकती, 18 साल की कर सकती है, लेकिन जो हालात चल रहे हैं, हो सकता है कि वो आने वाले वक्त में ये कह दें कि नहीं, 21 साल के जो लड़का लड़की है ना, अगर उनकी उम्र 21 साल की होगी तब वो कर सकेंगे, और फिर एट दैट टाइम 19 साल की लड़की या 19 साल का लड़का, यू नो दे विल बी कंसिडर्ड एज माइनर्स, कि वो अभी एलिजिबल नहीं है शादी करने के लिए। और तब उस वक्त ज्यादा जो उस वक्त के मुसलमान होंगे, अगर उनको इन चीज़ों का नहीं ना पता, वो फिर ज्यादा ताजुब करेंगे, अच्छा आज तो 21 साल का अगर लड़का या लड़की शादी जो है कर सकते हैं, हाउ वॉज इट पॉसिबल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैरिड यू नो अ गर्ल एट द एज ऑफ 9। आर यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट, बात समझ में आई है? अच्छा, ये मैंने आपको ना थोड़ा सा यानी एक ओवरव्यू दिया है दुनियावी लिहाज से। मुझे याद आ रहा है कि आपने सुना होगा सहाबी अमर बिन अल आस के बारे में, ठीक है? अमर बिन अल आस रजी अल्लाह अन, उनकी उम्र 12 साल थी, एंड हिज वाइफ वाइफ्स एज वाज अराउंड 10, 12 साल और 10 साल, एंड दे हैड अ बेबी जिनको अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल आस कहा जाता है, और ये ऑन द रिकॉर्ड है, यानी अल इसाबा करके एक बुक है, इट्स बेसिकली इंसाइक्लोपीडिया इब्ने रजब रहिमहुल्लाह की है, उसमें तमाम जो है सहाबा इकराम के बारे में, ताबीन के बारे में उन्होंने लिखा है। तो दिस वाज द कंडीशन एट दैट टाइम। होता ये है कि देखें, इस्लाम ने आपको रूलिंग बता दी है कि द मोमेंट द गर्ल रीचेज द मेच्योरिटी शी इज अलाउड टू गेट मैरिड। अब फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आप अमेरिकन किसी स्टेट में जाते हैं, वहाँ पे कहते हैं कि जी 18 साल की लड़की शादी कर सकती है, और कुछ अरसा पहले विद इन अमेरिकन स्टेट्स, टेक्सस में रूलिंग थी गालिबन 14 ईयर्स की लड़की हो या 16 साल की, यानी वहाँ पे उन्होंने जो है एज जो कैटेगरी है वो कम कर दी थी कि वहाँ पे 14 या 16 साल की गालिबन लड़की शादी कर सकती है। इसका मतलब ये है कि देखें, हर स्टेट का अपना अपना रूल है, कोई कह रहा है कि 18 साल की उम्र की लड़की शादी कर सकती, तो इसका मतलब ये है कि आप मुझे ये बताएं फिर 18 साल का जो लड़का या लड़की शादी कर रही है वो रूलिंग ठीक है या किसी जगह में अगर 16 साल की जो है लड़की शादी कर रही है आप किसको ठीक कहेंगे किसको गलत कहेंगे। हर खित्ते के हर इलाके के अपने अपने नॉर्म्स होते हैं, अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन लॉज होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको अलास्का की बात बताई है, आज की डेट में भी अ गर्ल इफ शी इज यू नो अगर वो 14 साल की होती है एंड इफ शी गेट्स प्रेग्नेंट इट मीन्स शी इज एलिजिबल टू गेट मैरिड। तो ये आज की रिपोर्ट है। अब यू नो आई गेट बैक टू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या आपको पता है, बल्कि आपको फॉर श्योर पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी और द मोमेंट शी यू नो द मोमेंट ही मैरिड यू नो द फर्स्ट वाइफ हिज फर्स्ट वाइफ व्हाट वाज हर नेम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा एंड शी वाज 15 इयर्स ओल्डर देन हिम। यानी उनकी उनकी जो उम्र थी 40 ईयर्स थी, 40 साल की थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी 25 साल की थी। और मुझे ये बताएं फॉर एग्जांपल इफ़ वी प्ले अ डेविल्स एडवोकेट फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा जनरल मैं आपको बता रहा हूँ अगर एक बंदा अयाश हो भरी जवानी में आया वो किसी बूढ़ी औरत से वुड ही मैरिड यू नो वुड ही मैरी एन ओल्ड वुमेन शादी करेगा। इसको तो आप छोड़ ही दें। हज़रत खदीजा शी वॉज अ विडो ठीक है उनकी उनको जो है उनके हस्बैंड जो है फोत हो चुके थे। तो बात ही आती है कि एट दैट पीक ऑफ एज जहाँ पे आपको पता है कि यानी आप बंदा शबाब होता है बंदा यू नो द पर्सन यू वॉन्ट्स टू इन्जॉय तो वो करेगा क्या वो तो चाहेगा कि मुझे जो है ऐसी लड़की से मेरी शादी हो जो कि यंग हो। तो यही पॉइंट इटसेल्फ इट इज सफिशिएंट कि नबी करीम सल्लम का कैरेक्टर कैसा था राइट right? और आप ये मुझे बताएं कि सुभान अल्लाह जब तक हज़रत खदीजा हयात थी इस दुनिया से नहीं गई तब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी दूसरी औरत से शादी नहीं की थी। और वो मुआशरा ऐसा था कि एक एक शादी नहीं पांच पांच दस दस शादियां करना इट वाज अ नॉर्म और एक शादी को ऐब समझा जाता था कि ये अजीब बंदा इसने जो है सिर्फ एक शादी की हुई है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमें यानी ये बतलाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यानी क्या मिजाज था व्हाट वाज हिज कैरेक्टर उनका कैरेक्टर कैसा था। अच्छा इसके साथ साथ जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत शुरू की इस्लाम की और मक्का वालों ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपको जो है ना स्लिप करना चाहा कि कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ हो जिससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्लिप कर जाएं। कभी आके कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम अपनी ज़ुबान से जो कहोगे ना तुम्हें महल चाहिए तुम्हें ख़जाना चाहिए हम तुम्हें वो तुम्हें कोई बाग चाहिए हम तुम्हें वो दे देंगे और ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तुम मक्का में जिस लड़की पे हाथ रखोगे ना हम तुम्हारी उस लड़की से शादी करवा देंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या जवाब था कहते हैं अगर तुम मेरे हाथ एक हाथ में सूरज रख दो और एक हाथ में अगर चांद रख दो तब भी जो मैसेज मैं लेके आया हूं मैं उससे एक जर्रा बराबर भी हटूंगा नहीं। तो आप मुझे बताएं कि ऐसा करैक्टर होता है जो अयाश आदमी होता है इज दिस द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन। अच्छा इसके साथ साथ एक बहुत ज़बरदस्त नरेशन है हज़रत खदीजा के बारे में हज़रत आयशा के बारे में इंशाल्लाह हम एंड में आएंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हम देखेंगे उनके वाक़यात। तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैं किसी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा से जेलस नहीं थी सिवाय हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की हालांकि वो उनसे मिली नहीं थी कभी एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हज़रत सफ़िया जो नबी करीम सल्लम की एक और वाइफ हैं शी वाज मच ब्यूटीफुल देन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फिज़िकल ब्यूटी की मैं बात कर रहा हूँ लेकिन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे सफ़िया से जो है आई एम जेलस फ्रॉम हर। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि नबी करीम सल्लम का मिजाज ऐसा नहीं है। नबी करीम सल्लम डजेंट गो ऑन द यू नो फिजिकल लुक्स। एक बार क्या हुआ बड़ी ज़बरदस्त नरेशन है नरेशन ये है कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि لا یکاد یخرج من البیت حتی یذکر ختیجہ, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا دن نہیں گزرا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے حضرت خدیجہ کے بارے میں ذکر نہ کیا ہو. اور ہوا کیا, پھر کہتی ہیں فَيُحْسِنَ الثَّنَاءَ عَلَيْهَا, اور ان کی بہت تعریف کرتے تھے. فَذَكَرَهَا يَوْمًا مِنَ الْأَيَّامِ فَأَخَذْنِي الْغِيرَةِ, تو ایک دن ہوا کہ وہ ایسی تعریف کر رہے تھے, فَأَخَذْنِي الْغِيرَةِ, غیرہ کہتے ہیں غیرت, تو مجھے غیرت آ گئی. اور پھر کہتی ہیں کہ میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اولیس اللہ عبدلک خیرا منہا, غور سے سنیے گا کہ اے اللہ کے رسول, کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہتر بیوی عطا نہیں کر دی, بہتر آلٹرنیٹ نہیں دے دیا؟ اور نریشنز بتاتے ہیں, واللہ یہ غور کرنے کی بات ہے, جب انہوں نے یہ کہا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکسپریشنز چینج ہو گئے, اور ایسے ایکسپریشنز ہو گئے کہ جیسے جب وہی اترا کرتی تھی نا تو ان کے ایکسپریشنز ویسے ہوا کرتے تھے. یعنی سمجھانے کے لیے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جب وہی نازل ہوتی تھی نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فیشل ایکسپریشن ریڈ ہو جاتا, پسینے چھوٹنے لگ جاتے, کپ کپی تاری ہوتی, اور یعنی یہ ان کا فیشل ایکسپریشن تھا. تو سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ ان کا ایکسپریشن ایسے ہو گیا کہ جیسے وہی نازل ہو رہی ہے. اور پھر کہتے ہیں, ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے, پھر کہتے ہیں کہ واللہ ما ابدلنی خیرا منہا, خدا کی قسم مجھے اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر کوئی آلٹرنیٹ نہیں دیا. اور پھر وہ کنٹینیو کرتے ہیں, کہتے ہیں آمنت بی اذ کفر بہا الناس, وہ جو خاتون تھی نا, وہ جو میری بیوی تھی, وہ مجھ پر تب ایمان لے کے آئی تھی جب تمام لوگوں نے مجھ پر کفر یعنی میرا انکار کیا تھا, مجھ پر ایمان نہیں لے کے آئے تھے, میرے ساتھ کھڑی رہی تھی وہ. اینڈ دین ہی سیز صدقتنی اذ کذبنی الناس, اور انہوں نے میری تصدیق کی جب تمام لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا. اور پھر کہتے ہیں کہ وواسطنی بمالها اذ حرمنی الناس, اور انہوں نے صرف باتوں سے مجھے بہلایا نہیں, انہوں نے مجھ پر اپنا مال خرچ کیا. اور پھر دوبارہ کہتے ہیں واللہ ما ابدلنی خیرا منها, اے عائشہ, مجھے اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر آلٹرنیٹ نہیں دیا. حضرت عائشہ کہتی ہیں اس دن مجھے پتہ چل گیا کہ یو نو آئی ڈریو اے ریڈ لائن, کہ آئی ڈونٹ ہیو ٹو کراس دس لائن اینی مور, کہ یہ ریڈ لائن ہے. حضرت خدیجہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں سننا پسند کرتے. سبحان اللہ, دس واز دا کیریکٹر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فزیکل بیوٹی کی طرف نہیں گئے, ان کے ایٹریبیوٹس کو انہوں نے یاد رکھا. اور کبھی جو عیاش پرست آدمی ہوتا ہے نا, وہ فزیکل بیوٹی کو دیکھتا ہے, ایٹریبیوٹس کو اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. بات سمجھ میں آ رہی برادرز؟ سو یو نو دیز آر سم آف دا فیکٹس. اور پھر کہتے ہیں ایک اور جو ہے کنٹینیو کرتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں ورزقنی اللہ ولدہ اذ حرمنی اولاد النساء, کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو اولاد بھی دی ہے وہ صرف خدیجہ سے دی ہے, باقی میری کسی بیوی سے میری اولاد نہیں ہوئی. اور وہ جو ماریا تھی وہ ان کی جو ہے وہ لونڈی تھی, وہ ان کی وائف نہیں تھی. تو یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا ان کے لیے. عائشہ رضی اللہ عنہا وہ خود نریٹ کرتی ہیں کہ ایک اور میں آپ کو چیز بتاتا چلوں, دیکھیں آج یہ اوتھینٹک نریشنز ہیں, متفقن علیہ, صحیح مسلم میں بھی ہیں, صحیح بخاری میں بھی ہیں, کہ جو کانٹریکٹ ہوا تھا نا میرج کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت عائشہ کا, وہ ہوا تھا جب عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر 6 سال کی تھی, اور ان کی رخصتی تب ہوئی تھی when she was of the age of 9 سال کی تھی. and she herself says کہ when I reached the age of maturity, جب میں اس ایج تک پہنچ گئی تب اس کے بعد جا کے میری رخصتی ہوئی. ٹھیک ہے, یہ ان کی اپنی جو ہے متواتر احادیث ہیں, ان میں جو ہے انہوں نے بتایا ہے. تو اس کے بعد اب دیکھیں, جنرلی اگر آپ آج کی دنیا کو ذرا انالائز کریں, آج جب ہم کہتے ہیں نا کہ فار ایگزامپل چائلڈ ابیوز کی بات کی جاتی ہے, چائلڈ ابیوز میں ہوتا کیا ہے, اس میں دیکھیں دیر آر ٹو پارٹس ان اٹ. ایک اس میں ایڈلٹ ہوتا ہے جو کہ ابیوز کرتا ہے, जो जो इफेक्ट डालता है, और एक साइड पे इफेक्ट ही होता है जिस पे सारा इफेक्ट हुआ, यानी होता है। अब यहाँ पे हमने देख लिया नबी करीम सल्लम का कैरेक्टर कि आया व्हाट काइंड ऑफ नेचर ही हैड, कि उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, कि उनका कैरेक्टर क्या था। और दूसरी साइड पे इंशाल्लाह मज़द आशर रज़ी अल्लाह अन्हा की एज वो देखते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं कि क्या वाकई माज़ अल्लाह कोई ऐसा प्रेशर था नबी करीम सल्लम का उनके ऊपर, चाहे वो फिज़िकल प्रेशर हो, साइकोलॉजिकल प्रेशर हो, या जो पावर डायनेमिक्स कहते हैं ना, कि फॉर एग्जांपल कहीं जो है खावंद होते हैं वो बीवी पे बड़ा रोब डालते हैं, रोब झाड़ते हैं। एक नरेशन में आता है कि सुभान अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि ऐ आयशा, नबी करीम सल्लम बताते हैं कि ऐ आयशा आई कैन टेल व्हेन यू आर एंग्री विद मी, मैं बता सकता हूँ जब तुम मुझसे नाराज़ होती हो, गुस्से में होती हो, जब तुम मुझसे राज़ी होती हो ना, यू स्वेयर बाय द लॉर्ड ऑफ मोहम्मद, तुम जो है मेरे रब का नाम लेके जो है ना मेरा जो है नाम अटैच करती हो रब के साथ, तुम यू टेक द नेम ऑफ द लॉर्ड ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जब तुम उससे नाराज़ होती हो ना, यू स्वेयर बाय द लॉर्ड ऑफ इब्राहिम। तो यहाँ से मैं पता लगा लेता हूँ कि तुम नाराज़ हो के नहीं। अब आप मुझे बताएं, अगर हस्बैंड वाकई अगर अपनी बीवी के ऊपर सख्ती करने वाला हो तो इस किस्म की बातें करेगा। और एक और बड़ा ज़बरदस्त वाक्य है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ बैठे हैं और घर में खाना, हमें पता होना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फाइनेंशियल क्या सरकमस्टेंसेस थे कि कई कई दिन कई कई महीने चूल्हा नहीं जलता था, और वो अपना गुजारा पानी बारले सत्तू वगैरह खजूरों इनसे अपना गुजारा किया करते थे। तो कहते ही हैं कि मेहमान आ गए, सहाबा इकराम आ गए, तो खाना जो है प्रिपेयर करना शुरू किया, और हुआ ये कि उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा उनकी तरफ से भी कुछ खाना आ गया। ठीक है, व्हाट हैपन्ड वाज़ कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा शी वॉज़ कुकिंग द फूड, उन्होंने खाना पकाया हुआ था, तो कोई ऐसा मामला हुआ कि जब उन्होंने देखा ना वहाँ से भी खाना आ गया और नबी को सलम ने वो सर्व किया, तो उसके बाद हज़रत आयशा ने ना शी ब्रोक द प्लेट्स, उन्होंने ना प्लेट्स नीचे गिरा दी। सहाबा इकराम उधर बैठे हैं, हज़रत आयशा ने प्लेट गिरा देती हैं। जब ये मंजर हुआ ना तो नबी करीम सल्लम ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराए सहाबा इकराम के सामने। कहते हैं गारत उम्मतुकुम, गारत उम्मुकुम, के तुम्हारी माँ को ना गैरत आ गई है, यानी शी इज़ जेलस्ड की दूसरे घराने से खाना क्यों आया है। अब आप एक लम्हे के लिए ज़रा यहाँ पे फुल स्टॉप जो है ना पॉज करें, अगर हमारे घरों में ऐसा हो, अगर कोई बीवी मेहमानों के सामने अगर ऐसा काम करे तो बात अल्लाह माफ़ करे कहाँ तक पहुँच जाएगी। ऐसे ही है, ओ हो हो, अल्लाह अकबर। आप देखिए, लुक एट द मैनर्स, द इखलाक ऑफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही स्माइल्ड, वो जो है मुस्कुराते हैं और फिर भी प्रेज करते हैं, और यानी सहाबा इकराम को बता रहे हैं शी इज़ योर मदर, वो तुम्हारी वालदा हैं, तुम्हारी माँ हैं, और उनको जो है ना गैरत ने आ लिया है। तो यानी ये जो है ना, दिस टेल्स द हम्बलनेस ऑफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दैट यू नो व्हाट कैरेक्टर ही हैड। इसके साथ साथ अगर हम इस दुनिया की बात करें तो होता ये है कि कोई बच्चा आज के ज़माने में, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ दैट चाइल्ड इज़ अब्यूज़्ड, तो ज़ाहिर बात है उसका ट्रॉमा ऐसे उसके ऊपर होता है कि सारी ज़िंदगी वो ट्रॉमा उसके जहन में रहता है, वो फिर प्रॉस्पर नहीं कर पाता बच्चा, ना प्रॉपर पढ़ पाता है, और वो अजीब जो है अजीब नेगेटिविटी में उसकी ज़िंदगी गुजर जाती है। वेयर एज़ इफ़ वी रीड अबाउट आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, वल्लाही आप उनके बारे में पढ़ेंगे, यू गेट टू नो कि हाउ पावरफुल शी वॉज, कितनी नॉलेजेबल थी वो। कुछ नहीं तो तकरीबन देर आर नो लेस देन 2200 नरेशंस विच आर नरेटेड फ्रॉम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। 2200 अहादीस हज़रत आयशा ने अहादीसें नरेट की हैं, और आपको मैं बताता चलूँ, देखें सुभान अल्लाह, इट इज़ सो प्रोफाउंड। मैं आपके सामने जितनी मर्ज़ी अच्छी बातें करता रहूँ, आप वाह वाह करते रहेंगे, आप क्या बड़ी बहुत अच्छी बात कर रहा है, लेकिन मेरी असल हकीकत जो है ना, मेरी असलियत मेरे घर वालों को पता है, मेरा असल चेहरा हो सकता है आपके सामने ना आता हो, लेकिन मेरे घर वाले आपको बता देंगे कि ये मैं, मेरा क्या कैरेक्टर है, मैं किस मिजाज का आदमी हूँ। अब आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, शी इज़ द वन कि वो यानी बिल्कुल बखूबी बता सकेंगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हाट वाज हिज कैरेक्टर बिहाइंड द डोर्स, जो कि दुनिया वालों को नहीं पता चल सकता अनलेस एंड अंटिल शी डजंट टेल। आप मेरी बात समझ रही हैं? नॉट इवन वंस आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी करीम सल्लम के बारे में कंप्लेन की हो, नॉट इवन वंस। और बताते ही हैं, यानी अब्यूज करना तो माज़ अल्लाह दूर की बात है, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा शी हरसेल्फ शी इज नरेटिंग, कहती हैं काना रसूलुल्लाह अहसन अन्नास खुलुका, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेहतरीन थे इखलाक में। और आपको वो नरेशन याद है कि जब कुछ लोग आए थे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के सामने, तो हज़रत आयशा ने क्या जवाब दिया था कि यानी जब उनके इखलाक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा था, खुलुकुहुल कुरान, उनका इखलाक जो है वो कुरान है, जो तुम कुरान में पढ़ते हो ना, इफ़ यू वॉन्ट टू सी इट फिज़िकल इन अ फिज़िकल फॉर्म, नबी करीम सल्लम को देख लो, दिस वॉज हिज कैरेक्टर। अब आप मुझे बताएं कोई बैलेंस या कोई मैच हो रहा है कहाँ पे? आज के लोग क्या अजीबो गरीब बातें कर रहे होते हैं कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो मुस्लिम्स हैं वो टॉर्चर करते हैं अपनी बीवियों को, और उनका जो है दे आर एग्रेसिव, और द वुमेन ऑफ इस्लाम यू नो दे हैव यू नो दे शुड बी लिबरेटेड, उनको जो है ये निकाब से, हिजाब से, ये ओप्रेशन से उनको निकालना चाहिए। कहीं भी आपको कहीं नज़र आ रहा है ओप्रेशन हो रहा है, कहीं भी उन पर जुल्म हो रहा है? नो नहीं। और फिर जो है अब उनकी शादी के बारे में जो है कुछ नरेशंस इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूँगा। हज़रत आयशा नबी करीम सल्लम के अहद में आने से पहले, उनसे निकाह में आने से पहले, शी वाज इंगेज्ड टू जुबैर बिन मुतअम। जुबैर बिन मुतअम एक जो है शख्स हैं, उनके साथ उनकी इंगेजमेंट हुई हुई थी, और ये वही शख्स है कि ये वो वहशी जो है ना, ये उनके जो है वो मालिक थे, ठीक है, वो इनके स्लेव थे वहशी। तो वो कहते हैं कि एक बार हुआ क्या कि हज़रत खौला हैं वो आती हैं नबी करीम सल्लम के पास, और उनको ये बताती हैं कि इन्हीं प्रपोज़ल, एक प्रपोज़ल लेके आती हैं कि हज़रत आयशा के बारे में, कहते हैं बिन्तु अहब्ब खल्क़िल्लाह अलैक, कि ए नबी, ए अल्लाह के रसूल, आपका क्या ख्याल है अगर आपकी शादी उस शख्स की बेटी के साथ हो जाए जो आपको सबसे ज़्यादा महबूब है, यानी अबू बकर की बात हो रही है, ठीक है। तो तब ना जो हज़रत खदीजा हैं, शी हैड पास्ड अवे ऑलरेडी, तब तक जो है वो फोत हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि यही जो हज़रत खोला है ना, वो जाती हैं उमर रुमान के पास, और उमर रुमान कौन है? हज़रत आयशा की वालिदा, उनकी मदर है। तो उनके पास जाती हैं, और जब ये बताती है ना कि आई हैव ऑलरेडी स्पोकन टू नबी करीम सल्लम एंड ही हैज़ यू नो इंडिकेटेड हिज कंसेंट, कि वो कहते हैं ठीक है आई कैन मैरी हर। तो उमर रुमान जो है ना उसी वक्त ही कहती हैं कि इस निकाह को लॉक करो, आई एम रेडी फॉर इट, ठीक है, कोई मसला नहीं है, गो अहेड, इससे बेहतर रिश्ता क्या हो सकता है। तो लेकिन कहती हैं अच्छा थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि उनके वालिद को आने दो, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की बात हो रही है, लेट मी डिस्कस विद हिम, और फिर जो है इंशाल्लाह मेरी तरफ से तो हाँ है, मुझे तो कोई इशू नहीं है। फिर जब वो अबू बकर से रज़ी अल्लाह अन्हु से डिस्कस करती है ना, तो वो कहते हैं कि वहल तसलुहु लहु वही बिन्त अखी, कि अब वो सुभान अल्लाह इतने क्लोज होते हैं नबी करीम सल्लम के, वो कहते हैं कि क्या ए अल्लाह के नबी आप अपने भाई की बेटी से शादी करेंगे? ठीक है। तो जब ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचती है ना, तो वो कहते हैं वबनतुका तहल्लुली, कि अंत अखी फिल इस्लाम, तुम मेरे भाई हो इस्लाम में, तुम मेरे सगे भाई नहीं हो, यू आर नॉट माय ब्लड रिलेटिव, यू नो यू नॉट माय ब्लड ब्रदर, तो मैं जो तुम्हारी बेटी है शी इज़ हलाल फॉर मी, आई कैन मैरी हर। तो ये बात होती है, तो अब अबू बकर थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं किस हवाले से, क्योंकि उन्होंने तो बात की होती है ऑलरेडी वो मुतअम के साथ। तो कहते हैं कि यार क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्योंकि सबको पता होता है कि अबू बकर ही इज़ द मैन ऑफ हिज वर्ड, जब वो किसी को ज़ुबान दे देना तो फिर वो पीछे नहीं हटते। तो फिर वो बस अल्लाह खैर किए जाते हैं, मोतीम के घर में जाते हैं। सुभान अल्लाह, बिफोर ही कुड से एनीथिंग, यानी इससे पहले कि वो कुछ कहते, मोतीम की जो बीवी है ना वो कहती है कि देखो अबू बकर, हमें बड़ा खटका लगा हुआ है, अगर हमने अपनी बेटी की तुम्हारी बेटी से शादी कर दी ना तो हमें डर है कि वो अपने दीन से ना फिर जाए, और तुम्हारा दीन हमें जो है पसंद नहीं है, तुम कहते हो कि ये बुत परस्ती गलत है, हम इस चीज़ को नहीं मानते। तो अबू बकर जो है ना ऐसे देखे रहे होते हैं, अबू बकर ना इशारा करते हैं मोतीम की तरफ, तुम्हारी बीवी क्या कह रही है, तो वो कहती हैं हाँ हाँ वो ठीक ही कह रही है। तो अबू बकर जो है ना सर थोड़ा सा झुका के बोलते हैं इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, अच्छा ऐसे करके ना कह तो सही रहे हो, तो ऐसे करके ना बस मुँह लटकाए बाहर आ जाते हैं। बाहर जैसे ही आते हैं ही स्टार्ट्स टू सेलिब्रेट, जो है ना खुशी मनाने लग जाते हैं, सुभान अल्लाह ओ जॉब डन, ठीक है। तो जब घर आते हैं वापस आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह एवरीबॉडी इज़ हैप्पी और उनकी इंगेजमेंट हो जाती है। फिर उसके बाद तकरीबन जैसे मैंने आपको बताया कि व्हेन शी रीचेस द एज ऑफ प्यूबर्टी और जब उनकी मैच्योरिटी आ जाती है तब जो है उनकी रुखसती होती है। तो अच्छा इसके साथ साथ ना बहुत ज़बरदस्त नरेशन है और ये नरेट भी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कर रही हैं। वो कहती हैं कि अगर तो जो अज़ीज़ की बीवी होती है ना, वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ, जी ज़ुलैखा भी उसको कहते हैं, वो एक्चुअली ज्यूइश नरेशन्स हैं, ज़ुलैखा कह लें चलें ताकि वो जो है बात करने में आसानी हो जाए। कहती हैं कि अगर वो ज़ुलैखा की जो सहेलियाँ हैं अगर वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देख के उन्होंने अपने हाथ काट लिए थे ना, अगर उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया होता ना, यू नो देयर हार्ट्स वुड हैव बीन कट विदाउट देम इवन नोइंग इट, कि वो उनके दिल चीरे जाते और उनको पता भी ना चलता। और ये कौन नरेट कर रहा है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कर रही हैं। और वो इतनी ओवर प्रोटेक्टिव थी ना, शी लव नबी करीम सल्लम यू नो लाइक एनीथिंग, सुभान अल्लाह, दिस इज़ द काइंड ऑफ यू नो दिस इज़ द रिलेशन दे हैड। लेकिन सुभान अल्लाह आज लोग इसको कितना यानी किस लेवल पे लेके आके बात करते हैं। और फिर उसके बाद जो है लेट्स टॉक अबाउट यू नो अ बिट ऑफ क्वालिटीज़ ऑफ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा। मूसा बिन तलहा कहते हैं कि मा रअयतु अहदन अफसहु मिन आयशा, कि मैंने आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से ज़्यादा अफसह कहते हैं कि ज़्यादा फसीह बलीग मैंने कोई शख्स नहीं देखा। और मैं आपको बताता चलूं कि अरब बड़े कंसर्न थे कि कोई भी फॉर एग्जांपल जब अरबी में कोई कोट जो है कोटेशन पास किया करता था तो वो उसके क्या ग्रामेटिकली वो सही बोल रहा है, उसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं है, तो वो बड़ा नोट किया करते थे इस चीज़ को। तो वो कहते हैं कि मैंने आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से ज़्यादा कोई फसीह बलीग मैंने शख्स नहीं देखा। एंड देन ही सेज मसरूक रज़ी अल्लाह अन्हा, वो कहते हैं कि रायतुल मशाइख मिन अस्हाब रसूलिल्लाह यसअलूनहा अलल फराइद, सुभान अल्लाह, कहते हैं कि मैंने देखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्हाब यानी द कंपेनियंस ऑफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबार सहाबा, वो आके मसाइल पूछा करते थे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से। दिस वॉज हर स्टेटस, ये उनका जो है नॉलेज का उनका जो है दिस वॉज हर नॉलेज। और नरेशन बताती हैं कि मदीना में 7 ऐसे लोग हुआ करते थे जो फतवा दिया करते थे, उनमें से एक हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा थी। और मैं आपको बताऊँ इट्स नॉट दैट ईजी, ये बातें करना बड़ी आसान होती हैं। जो फतवा देता है ना फतवा, उसके लिए यानी इट यू नो यू हैव टू बी अ स्कॉलर इन दैट रिगार्ड। फतवा देना कोई आम बंदा जो है उठ के जो है फतवा नहीं दे सकता। सो शी वॉज वन ऑफ द 7 स्कॉलर्स हु यूज्ड टू गिव फतवा, जो फतवा दिया करते थे। और फिर कहते हैं कि इमाम जुहरी रहमतुल्लाह अलैह, वो कहते हैं कि एक्चुअली ही इज़ द वन हु स्टार्टेड गैदरिंग अहादीस, यानी ये पहले शख्स हैं जिन्होंने अहादीस को कलेक्ट करना शुरू किया था। तो कहते हैं जब मैं हज़रत आयशा के पास आया ना अहादीस गैदर करने के लिए, तो मैंने उनको कैसा पाया, कहते हैं आई फाउंड हर अ बाउंडलेस सी, जिसकी वो समुंदर हैं वो जिसकी कोई गहराई नहीं है नॉलेज की। दिस वॉज द नॉलेज ऑफ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा। अब आप मुझे बताइए, जो हमने जो भी नरेशन हम पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, आपको कहीं भी कोई, आपको एक लम्हे के लिए भी कोई ऐसी ऐसी थॉट आ रही है कि देर इज़ अ चाइल्ड हु इज़ अब्यूज और उसको रोका जा रहा है, ज़माने से वो जो है बंदा कटा हुआ है और ये हो? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, सुभान अल्लाह। अच्छा, उसके बाद अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, वो कहते हैं कि जब यानी अय्याम हज आते थे ना, हज के दिन आया करते थे, तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा शी यूज़ टू सिट इन अ टेंट, एक टेंट में जो है खेमे में बैठा करती थी, और लोग आते थे उनसे मसाइल पूछने के लिए, पूरी जो भी यानी हज करने के लिए जो आता था, अगर उसको कोई मसाइल दरपेश आते थे इस्लाम के बारे में, तो वो उनसे आके मसाइल पूछा करते थे। इमेजिन करें कि मदीना में आप एंटर हो रहे हैं, मदीना में नहीं, आप मक्का में जा रहे हैं हज करने के लिए, और आप देख रहे हैं कि हुजूम लगा हुआ है लोगों का और मसाइल पूछे जा रहे हैं, आप भी हैरान हुए कि यार कौन अंदर स्कॉलर बैठा हुआ है, कौन शेख हैं, और लो एंड बिहोल्ड यू सी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा वो जो है बता रही हैं, मसाइल बता रही हैं, सुभान अल्लाह। तो यहाँ से पता है कि हमें क्या इशारा मिलता है? वल्लाही मैं आपको बता रहा हूँ कि दीन जो है ना, दीन, आर दीन इज़ परफेक्ट, हमारे दीन में कोई खामी नहीं है। नो वेयर इन इस्लाम इट इज़ सेड कि नहीं जी तुमने यहाँ, यानी आज हम क्या करते हैं, हमारे कल्चर में ऐसा भी है कि नहीं यार लड़कियों को ना बस 8वीं 10वीं जमात पढ़ाओ और उसको जो है निकालो घर से, इसको पढ़ा के करना क्या है, ये हमारे लिए क्या बेनिफिट कर सकती है, दिस इज़ अगेंस्ट इस्लाम। अब ये नहीं है कि उसको आप, ये जो आपकी ये जो सेकुलर तालीम है, आप उसको ग्रेजुएट भी बना रहे हैं, PhD भी करवा रहे हैं, लेकिन जब इस्लाम की बारी आती है अब उसको सही तरह उसको जो है कुरान मजीद पढ़ने जो है वो नहीं हो रहा, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। वो यू नो देयर इज़ अ सेइंग कि इफ़ यू एजुकेट अ बॉय यू एजुकेट 1 पर्सन, इफ़ यू एजुकेट अ गर्ल यू एजुकेट द होल नेशन, और ये वाकई सही है, लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, ज़्यादा पढ़ाना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो दे एजुकेट द होल नेशन, उन्होंने आगे एक पूरी जनरेशन को जो है आगे लेके जाना होता है। और अबू मूसा अल अशरी वो कहते हैं, बड़ी ज़बरदस्त बात कहते हैं, बोलते हैं ऐसे ऐसे मसाइल जो कि सहाबा इकराम को भी नहीं पता होते थे, हमें हमेशा उन सवालात का जवाब हज़रत आयशा से मिला है, आयशा हमें उन मामलात के बारे में क्लैरिटी दिया करती थी। इसके साथ साथ उरवा बिन ज़ुबैर भी रज़ी अल्लाह अन्हु वो कहते हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा शी वाज़ द मोस्ट नॉलेजेबल इन नोइंग हलाल एंड हराम, कि हलाल और हराम के बारे में अगर किसी ने जानना हो ना तो हज़रत आयशा के साथ जो है देर वॉज़ नो मैच ऑफ हर, कोई उनसे जो है मैच नहीं करता था। अच्छा, इसके साथ साथ ना अभी हमने देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज में हज़रत आयशा जो है पीक पे थी, इसके साथ साथ हज़रत आयशा शायरी में भी बहुत आगे थी, अरबों में शायरी का भी बड़ा रवाज हुआ करता था, पोइट्री में अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है क्योंकि ये अरबों का रवाज था शायरी करना। इसके साथ साथ शी वाज एक्सपर्ट इन मेडिसिन एज़ वेल। अब बंदा पूछे नॉलेज रखना वो तो समझ में आता है, लेकिन मेडिसिन में उन्होंने कैसे एक्सेल किया? उन्होंने पता है कैसे एक्सेल किया था कि जब नबी करीम सल्लम बीमार हुए थे ना, इसे हम कहते हैं ना सेल्फ स्टडी, उन्होंने सेल्फ स्टडी की और उन्होंने यू नो जो क्योर्स होते हैं कि जो है ये अगर चीज़ें मिलेंगी तो ये इसका क्योर बनता है, उन्होंने नबी करीम सल्लम को जो है यानी उनकी प्रोटेक्शन के लिए उनके लिए मेडिसिन को स्टडी किया, एंड शी बिकेम वन ऑफ द एक्सपर्ट्स इन मेडिसिन। दिस वॉज द रिलेशन ऑफ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा एंड प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, इसके साथ साथ ना बड़ी ज़बरदस्त जो है हज़रत आयशा बात बताती हैं, वो कहती हैं कि 10 ऐसी चीज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हैं जो कि सिर्फ वो मामलात मेरे साथ ही हुए हैं और किसी के साथ नहीं हुए, और वो ख़ुद नरेट करती हैं, कहती हैं कि नंबर 1 कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे शादी की वेयर एज आई हैड नो हस्बैंड बिफोर, मेरे कोई पुराने यानी दूसरे हस्बैंड नहीं थे, इनके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी जिन जिन के साथ शादी की है ना, या तो वो डाइवोर्सी थी या तो वो विडो थी, سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے. آئی ریپیٹ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شادی کی ہیں, ہی ہیڈ 9 وائف, ٹھیک ہے, امہات المؤمنین, اور ان میں سے صرف حضرت عائشہ تھی جن کی کسی سے پہلے شادی نہیں ہوئی نہ بعد میں شادی, کیونکہ ان کے بعد میں تو شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, وہ امہات المؤمنین میں سے ہیں. تو یہاں سے ہمیں ایک اور بھی اشارہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا کریکٹر تھا. مجھے بتائیں آپ کیسا کریکٹر تھا کہ جو آج جو ویسٹرن میڈیا جو پورٹرے کرتا ہے کہ معاذ اللہ یور پروفٹ واز دس, یو نو یور پروفٹ واز دس اینڈ دیٹ, حالانکہ وہ بالکل غلط ہے. تو کہتی ہیں کہ نمبر ون انہوں نے بتایا کہ آئی واز دا ون ہو واز میرڈ اونلی ٹو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, میرے علاوہ کسی خاتون کو یہ جو ہے شرف حاصل نہیں ہوا. اور پھر کہتی ہیں کہ میرے جو والدین تھے بوتھ مدر اینڈ فادر وہ مہاجرین میں سے تھے, انہوں نے جو ہے ہجرت کی تھی, دونوں مسلمان ہوئے اور دونوں نے ہجرت کی. اور پھر کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے حق میں صفائی پیش کی اور آسمان سے آیات نازل کی تھی. اور آپ کو پتہ ہے نا وہ جو واقعہ عف کا تھا جن میں صفوان بن معطل کا جو ہے واقعہ ہوا تھا. اب امیجن کریں, سبحان اللہ, حضرت عائشہ کی صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ برات نازل کرتے ہیں کہ شی از انوسنٹ, کیا مقام ہوگا ان کا, سبحان اللہ. اور پھر کہتی ہیں کہ جبریل علیہ السلام ہی پروپوزڈ آن مائی بیہاف. آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ہاں کی تھی نا ابو بکر کو اور وہ خاز خولہ کو, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا تھا. خواب یہ آیا تھا کہ حضرت عائشہ دکھائی گئی تھی خواب میں, اور جب انہوں نے اپنا جو ہے دوپٹہ اٹھایا تھا نا تو وہ جو ہے دوپٹے کے اندر جو ہے حضرت عائشہ جو ہے وہ تھی. سو دس از ہاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو نو کیم ٹو نو کہ میری جو ہے فیوچر وائف حضرت عائشہ جو ہے وہ بنے گی. تو وہ یہی کہتی ہیں, یعنی شی از بوسٹنگ کہ میرا جو پروپوزل ہے نا جبریل علیہ السلام لے کے آئے تھے. سو دس از ہاؤ مائی یو نو میرج ہیپنڈ. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اب دیکھیں سبحان اللہ کیا ان کا گھرانہ تھا. کہتے ہیں کہ جس باؤل میں وہ پانی پیا کرتے تھے, دے یوز ٹو ٹیک باتھ یو نو ان دا سیم باؤل. ان کے پاس کوئی یہ نہیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہے ایسیسریز اویلیبل ہوا کرتی تھی. تو کہتے ہیں کہ میں نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وی یوز دا سیم باؤل ان وچ وی یوز ٹو ڈرنک اینڈ وی یوز ٹو باتھ ود. اور پھر کہتے ہیں کہ میں ہی وہ خاتون ہوں, ان کا جو چیمبر تھا نا, آپ دیکھیں گھر تو کہہ نہیں سکتے, جو ان کا چھوٹا سا چیمبر تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے نا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روم چھوٹا تھا, تو شی ہیڈ نو ادر پلیس ٹو لے ڈاؤن, تو وہ ان کے جو ہے سامنے جو ہے لیٹ جایا کرتی تھی. پھر جب وہ جب سجدے میں جایا کرتے تھے تو پھر جو ہے وہ پیٹ کیا کرتے تھے کہ اپنے ٹانگیں پیچھے کر لیں, تو پھر وہ سجدہ کیا کرتے تھے. یعنی یہ ان کا روم تھا, ان کا گھر تھا سارا, سبحان اللہ. اینڈ ناؤ یو اینڈ می, آج ہم جو ہے ہم لوگ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ پرابلمز ہیں, ہمیں وہ پرابلمز ہیں, ہمارے گھر چھوٹے ہیں, ہم بڑے سے بڑے گھر کی طرف ہم لوگ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. تو دس از واٹ حضرت عائشہ سیڈ. اور پھر کہتے ہیں کہ جب وحی نازل ہوا کرتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میرے گھر میں ہوا کرتے تھے. اور پھر کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ڈائیڈ وائل ہی واز آن مائی چیسٹ, کہ جب وہ آخری ان کے ایام تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو حضرت عائشہ یو نو شی واز ہولڈنگ ہم, ان کو جو ہے انہوں نے ہولڈ کر کے رکھا ہوا تھا. تو اسی طرح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی پیسڈ اوے ان دا ہینڈز آف عائشہ رضی اللہ عنہا. کہتے ہیں یہ بھی شرف جو ہے پوری دنیا میں جو ہے مجھے جو ہے یہ شرف ملا تھا. اس کے ساتھ کہتی ہیں کہ ہی ڈائیڈ آن مائی نائٹ, کہ جب ان کی باری تھی نا تو اسی دن جو ہے اسی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے وفات پائی. اور پھر کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی از بریڈ ان مائی روم. 10 چیزیں گنواتی ہیں. اور یہاں سے پتہ کیا چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو پتہ تھا کہ واٹ از ہر اسٹیٹس. اور یعنی یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاؤ نالجیبل شی واز, ہاؤ شارپ شی واز, اور کتنے بلنٹ طریقے سے جو ہے وہ اپنی آواز بلند کیا کرتی تھی. یہ وہ خاتون ہے جنہوں نے یو نو شی ہیڈ لیڈ این آرمی, یعنی جنگوں میں جو ہے نا یہ لیڈ کیا کرتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. تو یہ ان کا جو ہے کریکٹر ہے. اس کے ساتھ ساتھ बड़ी ज़बरदस्त नरेशन एक और बताती हैं, कहती हैं कि अल्लाह ताला ने जब आयात नाजिल की ना मेरे डिफेंस के लिए, तो अब उसके बाद जो है ना मैंने तहैया कर लिया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोटेक्शन के लिए, उनकी डिग्निटी के लिए मैंने हमेशा, अगर मेरी गलती भी हुआ करती थी ना तो मैं उनको प्रोटेक्ट किए करती थी। मिसाल के तौर पे अभी मैंने आपको बताया ना कि हज़रत खदीजा के बारे में, तो वह कहते हैं कि मुझे बड़ी गैरत आ जाती थी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तारीफ़ किया करते थे, हालांकि अपेरेंटली देखा जाए शी यू नो इट सीम्स एज इफ शी इज़ ट्राइंग टू पुट हरसेल्फ इन एन ऑकवर्ड सिचुएशन, यानी वो अपने बारे में थोड़ा सा नेगेटिव जो है पहलू क्रिएट कर रही हैं, बात समझ रही हैं, लेकिन वो खुद नरेट कर रही हैं क्योंकि वो बताना ये चाह रही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी मेरी आर्गुमेंट होती थी ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो कभी भी गलत नहीं होते थे। तसव्वुर करो तो सही कितना मुश्किल होता है। अब देखें हस्बैंड एंड वाइफ में, अगर हस्बैंड फॉर इंस्टेंस ही इज़ द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला के नबी हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हो रहे हैं उनको, यानी उनका क्या स्टेटस होगा, और उनकी वाइफ मिसाल के तौर पे, यानी इट इज़ यू नो एट टाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि कोई ना कोई हो सकता है वाइफ ना समझ पा रही हो हस्बैंड को, लेकिन नबी करीम सल्लम का क्या ज़बरदस्त कमाल का कैरेक्टर है, उन्होंने कभी भी ये एग्जैजरेट नहीं किया कि तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रही हो, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ, कभी भी इस किस्म के अल्फाज जो है न अपनी बीवियों तो दूर की बात किसी शख्स को, यानी कभी भी अपना रोब नहीं झाड़ा कि तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ। अल्लाहु अकबर, ये कैरेक्टर था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कहते हैं नबी करीम सल्लम तो यानी अपने दोस्त अहबाब तो दूर की बात, अगर कोई रास्ते में उनको कोई लोंडी आके, कोई भी यानी गरीब से गरीब यतीम बच्चा आके, ये बंदा आके उनका हाथ पकड़ के अपने काम के लेके जाता था ना, नबी करीम सल्लम ये नहीं कि वह हाथ छुड़ा लिए कि कहाँ मुझे लेके जा रहे हो, उनको उनके साथ जाते थे यहाँ तक कि उनका काम ना करके आ जाए। ये था करेक्टर हमारे नबी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यहां से हमें एक और बड़ी जबरदस्त बात पता चलती है कि देखिए ना, जो मैंने आपके सामने रखा है कि उन्होंने कितनी नरेशंस जो हैं कोट की हैं, तकरीबन 2200 नरेशंस आयशा की तरफ से जो है नरेट हुई हैं। आपको बताऊं उन्होंने क्यों नरेट की हैं, यानी हम तक कैसे पहुंचाई हैं, हालांकि हो सकता है कि उन्होंने कोई ऐसी नरेशन भी हो जिसमें ये पहलू नज़ाहिर होता हो कि ये उनको नहीं बात बतानी चाहिए थी, ये बात लीक नहीं होनी चाहिए थी, उन्होंने इसलिए बताई हैं क्योंकि शी इज़ द मदर, वो हमारी माँ हैं और माँ हमेशा अपने बच्चों के लिए खैर ख्वाही चाहती है। उनको पता था कि आने वाली जनरेशन्स आएंगी जिनको पता होगा कि ये मुआमलात थे, ये मुआमलात हुआ करते थे। एक बार उरवा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु, ये उनके भतीजे हैं, ठीक है, अस्मा बिन अबी बकर जो इनकी बहन है उनके जो है बेटे हैं, वो कहते हैं कि एक बार मैं आया और गवाही देते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा जो है मैच होती हुई नमाज मैंने किसी के नहीं मैंने देखी, कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा हर प्रेयर यूज़ टू रिजेंबल सिमिलर टू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कहते हैं कि मैं एक बार जब आया ना किसी काम के लिए, तो हज़रत आयशा ना खड़ी होकर नमाज़ पढ़ रही थी, तो मैं थोड़ा सा उनका ध्यान जो है इधर उधर करने के लिए ना कभी उनके राइट पे आ रहा हूँ कभी लेफ्ट पे आ रहा हूँ कि मेरी बात सुन लें जल्दी नमाज़ ख़त्म कर लें, लेकिन बोलते हैं वो अपनी सुबहान अल्लाह नमाज में लगी हुई हैं, नमाज़ पढ़ती जा रही हैं। और पता क्या आयत पढ़ रही थी, कहते हैं एक आयत पढ़ रही थी, आयत ये थी कि फ़मन अल्लाहु अलैना वबकाना अज़ाब समूम, कि अल्लाह ताला ने हमें फ़मन अल्लाहु अलैना, अल्लाह ताला ने हम पर जो है एहसान किया है और हमें जहन्नम के अजाब से, हमें बुरे अजाब से बचा लिया है। तो यही आयत पढ़ती जा रही हैं और मैं उनका ध्यान जो है ना बटाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो किसी तरीके से जो है ना वो मेरे उसमें आ ही नहीं रही, जो है मेरी बात ही नहीं जो है ध्यान ही नहीं मेरी तरफ कर रही। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा जाता हूँ कि बाहर जाके बाज़ार से कुछ शॉपिंग कर लेता हूँ, तब तक उनकी नमाज भी ख़त्म हो चुकी होगी, तब अपना काम भी करवा लूँगा। कहते हैं कि मैं अपना पूरा बाज़ार जाके शॉपिंग वगैरह करके अपना काम करके जब मैं वापस आया, शी वॉज स्टैंडिंग इन द सेम पोजिशन और यही आयात तिलावत कर रही थी। फ़मन अल्लाहु अलैना ववक़ाना अज़ाब समूम, अल्लाह ताला ने हम पर एहसान किया है और हमें बचा लिया है बुरे अज़ाब से, अज़ाब अलीम से। दिस वॉज योर मदर माई ब्रदर्स, शी इज आर मदर। तो इसके साथ साथ जो है ना, देखिए ना कितनी बड़ी आपदाएं, कहाँ पे उनका स्टेटस और कहाँ यहाँ पे अजीबोगरीब बातें की जाती हैं। प्रॉब्लम ये कि हम लोग खुद कंफ्यूज्ड हैं, हम खुद अपने दीन को ऑन नहीं करते। तो यहाँ पे इंशाल्लाह आई थिंक कुछ चैरिटी के बारे में मैं चाह रहा था बात करें। ये है कि इसको वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह, आज कोशिश करेंगे फिर किसी और दिन इंशाल्लाह फिर इन्हीं जो हज़रत आयशा के बारे में पूरा एक सेपरेट लेक्चर जो है हम बात करेंगे। बट बिफोर आई एंड देर आर फ्यू वर्ड्स विच आई वॉन्ट टू शेयर, वो ये कि देखें अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ पर आते हैं, अपना टाइम लगाते हैं, दीन को सीखने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताऊँ वल्लाही ये दीन मौलवियों का दीन नहीं है, ये दीन उलमाओं का दीन नहीं है, ये दीन आपका और मेरा दीन है। ये उलमाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि इस्लाम के ख़िलाफ़, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, हमारी माओं के ख़िलाफ़ कोई बात की जाए और हम जो है मुंह फेर के बोलेंगे नहीं यार ये मौलवियों का काम है, हमारा काम नहीं। नहीं, अगर आज हमने ये रवैया अख्तियार किया ना, तो ये मत भूलिएगा जो आपकी आने वाली अगली जनरेशन है ना, वो हो सकता है आपका नाम भी भूल जाए, क्योंकि यू गाइज आर नॉट टेकिंग योर दीन सीरियसली। मैं आपको बता रहा हूं, एंड इट्स अबाउट टाइम कि आप इस दीन को ऑन करें, रादर देन बीइंग एन अपोलोजेटिक नहीं यार क्यों ऐसा है। और आपको पता है बहुत सारे मुसलमान ऐसे भी हैं, दे ट्राई टू प्रूव कि नहीं यार हज़रत आयशा की जो उम्र थी ना वो 9 नहीं थी, 19 थी, वो शायद एक जो है ना वो लिखना भूल गए थे, दिस एंड दैट, दे ट्राई टू यू नो जस्टिफाई। नहीं, डंकी की चोट पे बोल। और आप उनको बताएं तुम ऐसे हाउ आर यू सेइंग कि आज के बच्चे उस, यानी आज के जो है बच्चे उस वक्त के भी वो बच्चे ही कहलाए जाएंगे। हिस्टोरिक प्रूफ हमारे सामने है, हमारे पास सारे लॉजिकल प्रूफ हमारे सामने है। क्या यानी देखें ना कोई आपको कहीं सुराग मिलते कि कहीं ना कहीं अनजस्टिफिकेशन हुई हो, इनजस्टिफिकेशन हज़रत आयशा के साथ, या किसी ने उंगली उठाई हो नबी करीम सल्लम के ऊपर कि तुमने क्यों किया है, माज़ अल्लाह। लेकिन आज मुसलमान जो है ना, आज मुसलमान शर्मिंदा होता है। और यानी हैरानी की बात है कि जब दो यानी दोस्त भी जब बैठे होते हैं ना, इस्लाम को यानी उसके बारे में बात करना तो दूर की बात, कोई बात करते तो बंदा बोलते नहीं यार ये कैसी बातें कर रहे हो, तूने मूड ख़राब कर दिया यार हमारा। बाकी मूवीज़ की बात जितनी मर्जी कर लें, जस्टिन बीबर की बात बिल्कुल जो है उसकी तबीयत ख़राब है उसके बारे में बात कर लें, ऐसा ही है उसके शोज़ जो है वो हो रहे हैं। जॉनी डेप के बारे में बात कर लें, वो जो कॉन्ट्रोवर्सी चली है माशाल्लाह, ये हमें बड़ा मज़ा आता है इस यानी अपने आप को अपडेटेड रखा हुआ हमने, क्या चल रहा है ऑल अराउंड अस, ठीक है हमें पता होना चाहिए। हाँ, पेट्रोल कब महंगा होना है, हमारी गाड़ियाँ पहले बाइसाइकिल कह रहा हूँ साइकिलें पहले खड़ी होती हैं बाहर, वो जो है ना पहले हम पेट्रोल डलवा लें। आई मीन व्हाट इज रॉन्ग विद यू गाइस, दीन को सीखें। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु ली वलकुम, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।